أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرح لوح و قلم، اس کتاب کا 101 نمبر پیج ہے. اس کے مین چیپٹر کا عنوان تو تھا کہ لا علمی بھی علم ہے. یہ جو ہم کسی چیز کا علم رکھتے ہیں، اس کی دو سطحیں، دو رخ ہیں، کسی چیز کا علم رکھنا اور کسی چیز کا علم نہ رکھنا. ہر چیز جو ہمارے علم میں آتی ہے وہ پہلے ہمارے علم میں نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ استغراق اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مستغرق ہونا سیکھے، کنسنٹریشن زیادہ ہو یکسوئی کے ساتھ. یکسو ہونا جب ذہن کے تمام رجحانات ایک ہی سمت میں مرکوز ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں یکسوئی. اور مستغرق ہونا کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں ڈوب جانا. مرکوز ہونے کا مطلب ہے ارتکاز، اور یہ لفظ ہے مرکز سے، کسی بات کے مرکزی نقطے پہ توجہ کو قائم رکھنا ارتکاز کہلاتا ہے، اور توجہ کا مرکز پہ ٹکے رہنا مرکوز کہلاتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں اس طرح ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں الفاظ کی شکل اور پھر ان کی معنویت اور پھر ان کے اصل مفاہیم سے آگاہی رہے. تو اب اس چیپٹر کا ذیلی عنوان ہے لا کا مراقبہ، یعنی فکر القا، یعنی جو قوت القا ہے جب اس کی نشو نما ہو جاتی ہے یا اس کی نشو نما کے لیے یہ کیا جاتا ہے مراقبہ، تاکہ لا کے انوار ورود میں بھی آنکھ کے سامنے آ جائیں. اور جوں جوں ہمارا تفکر گہرائی میں اترتا ہے اور ہمارے جو قوت القا جو ہے اس کو اس میں لطافت پیدا ہوتی جاتی ہے، جو کام کرنے کی صلاحیتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو پھر ہماری نظریں غیب کے نقوش کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک رخ کو ہم علم کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہم ناواقف ہیں اس کا نام لا علمی رکھتے ہیں. جب لا علمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہر صورت ہم اس علم کا تذکرہ کرتے ہیں جس علم سے ہم ناواقف ہیں. علم کی کوئی حیثیت ہو، وہ علم ہو یا لا علمی، دونوں علم ہیں، اور اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، دونوں کا تعلق بصارت سے ہے. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. علم کی کوئی بھی حیثیت ہو، چاہے وہ علم کی ہو یا لا علمی کی، ان کا تعلق بصارت سے ہے. اب اس بات کو لے کے بیس بنا کے حضور فرما رہے ہیں، تلاش یہ کرنا ہے کہ ظاہر آنکھ سے دیکھنے میں اور روحانی آنکھ سے دیکھنے میں کیا فرق ہے. اس فرق کو سمجھیں کہ روحانی آنکھ سے دیکھنا یا ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اس میں کیا فرق ہے. اب ظاہری حالات میں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی طرز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نگاہ کا ٹکراؤ کسی چیز کے دیکھنے کے سبب بنتا ہے. مثلا یہ ٹکراؤ سے کیا مراد ہے، دیکھیں نا، جب ہم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہماری نظر بظاہر کچھ نہیں دیکھ رہی، کیونکہ ہمیں ایک نیلا سا رنگ نظر آ رہا ہے، یا چاند نظر آ رہا ہے. تو جو چیز جس سے نگاہ ٹکرائے گی وہ دکھے گا. چاند سے ٹکرا رہی ہے تو وہ ٹکراؤ جو ہے وہ سبب بن رہا ہے چاند کے دکھنے کا. बारहा ऐसा होता है कि एक चीज सामने पड़ी है, आप देख भी उसी सिमत में रहे होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता, तो वो चीज सामने नजर नहीं आ रही होती। तो देखने की इस तर्स को इस तरह बयान किया जाता है कि निगाह का टकराव किसी चीज के देखने का सबब बनता है। और जब हम निगाह के टकराव या निगाह के देखने का तजजिया करते हैं, जब हम अब बजाहिर ये क्या है कि जी मैंने सामने देखा मुझे मेज नजर आ रही है, तो अब इस बात का मैं क्या तजजिया करूं, तो ये देखें कि किस तरह से इसका तजजिया किया जाएगा। तो ये जब हम किसी चीज के मतलब इस देखने का तजजिया करते हैं, तो ये बात हर शख्स महसूस कर सकता है कि आंख के डेलों पर पलक की जर्ब पड़ती है। ये देखना तब मुमकिन है जब हमारी आंख बंद होकर खुलती है, तो ये असल में आंख के डेले पे एक तरह की हरकत हुई या इसने इसको चोट लगाई या जर्ब लगाई। आंख के डेले के ऊपर पलक की जर्ब पड़ती है तो चीजें नजर आती रहती हैं। अब आप बेशक ये तजर्बा कर लें कि थोड़ी देर आंख को टका के किसी नुक्ते पर रखें और पलक ना झपकने दें, थोड़ी देर में वो चीज गायब हो जाएगी। ये तजर्बा हर आदमी कर सकता है। तो दूसरी तर्ज यह कि आंख का डेला हरकत ना करे और ना ही डेले के ऊपर पलक की जर्ब पड़े। डेले से मरा आई बॉल, ये जो आंख पूरी है इसको आई बॉल कहते हैं अंदर से, तो ये हरकत ना करे और ना ही डेले के ऊपर पलक की जरब पड़े, तब भी सब कुछ नजर आने लगता है। और ये देखना बातिन में देखना है, जब हमारी बात ये जो डेले की हरकत है ये रुक जाए और पलक की हरकत रुक जाए, तो अब जो हमें दिख रहा है वो असल में बातिन का दिखना है। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में आपको कोई बातिन को देखने को क्या समझाए। ये देखना बातिन में देखना या इसे को रूह की आंख की बिनाई कहा जाएगा। और इसका तजुर्बा इस तरह हो सकता है कि आंखें खोलकर आदमी बैठ जाए, आंखों के सामने कोई टारगेट बना ले, सफेद कागज पर एक स्याह दायरा बनाकर उसके ऊपर नजर जमा दी जाए। इस तरह नजर जमाएं कि पलक की हरकत साकत हो जाए, डेलों का हिलना बंद हो जाए, तो खुद नजर आएगा कि क्या होता है, खुद तजर्बे में आ जाएगी बात। देखे ना, ये किसी भी इल्म की हक्कानियत का इससे बड़ा सबूत क्या है कि वो महज बात ना करे, महज अपने दलाइल ना दे, बल्कि आपको कहे कि भाई खुद प्रैक्टिस कर लो, खुद तजर्बा कर लो, यू मे एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ। ये इतना इलाही कानून है, हर बंदे के अंदर ये कैफियत जा रही है, हर बंदे के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने वदियत की हुई है। जब हजूर कलंदर बाब औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इस्तग़राक की कैफियत तारी होती थी, यानी वो सोचों में इस कदर मुस्तगरक हो जाते थे, तो उन लम्हात की बात बता रहे हैं कि मैंने बहुत गौर से उनकी आंखों का मुतालिया किया, ऐसे लगता था कि किसी एक नुक्ते पर आंख मरकूज हो गई है, ना पलक झपकती थी ना डेले में हरकत होती थी, पर बाज़ औकात ये हरकत एक एक घंटे तक कायम रहती थी। अंदाजा करें क्या यक्स हुई है, यानी एक बंदा अपनी बात जो भी उसके जहन में बात चल रही है उसमें वो इतना यक्सू हो गया, उसमें वो इतना डूब गया कि मादी आंख के डेले और पलकों की हरकत साकत हो गई। और ये बाज़ औकात ये हरकत एक एक घंटे तक कायम रहती थी। मैंने देखा कि हजूर कलंदर बाब औलिया के सीने में लाखों दायरे हैं اور ہر دائرے میں کوئی مخلوق بندھی ہوئی ہے. ان کے دماغ سے نورانی لہر ہر دائرے کو حرکت دے رہی ہے اور پوری کائنات میں ان کا تصرف جاری ہے. یہ انہوں نے دیکھا. ہر نوع ایک دائرہ ہے اور ہر نوع کے دائرے ان کے ذہن سے کنیکٹڈ ہیں. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب. اب یہ ہے تسخیری فارمولے کے بندہ کائنات میں موجود دیگر انواع کے دائروں سے کنیکشن کنیکٹ ہو جائے, لنک اپ کر لے. اب لا کا مراقبہ دراصل ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم علمی اعتبار سے مادی جسم میں موجود رہتے ہوئے عقل و شعور کے اعتبار سے جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دیں. یعنی ہماری عقل اور ہمارا شعور جو کچھ جانتا ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے, نہ ہی اسے ختم کرنا مقصود ہے. صرف اس سے توجہ ہٹا لیں. یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کی بات پوری سن کر یا آدھی بات سن کر اپنی کہانی چھیڑ دیتا ہے. یعنی ابھی وہ آپ کی بات کو پوری طرح, کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا علم, اس کی اپنی عقل, اس کا شعور, وہ اپنا ریکارڈ بیان کرنے لگتا ہے, اس کو اگنور کرنا نہیں آ رہا. یہ ہے نفی کا وہ سبق, یعنی کہ جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دیں. اور نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے, بیداری میں بینائی جس طرح کام کرتی ہے اس طریقہ کار کو بدل دیا جائے. بھائی دیکھیں نا, ہم بیداری میں جس طرح آنکھوں سے کام لیتے ہیں اس طریقے کو بدل دیں تو کیا تبدیلی لائیں گے؟ بیداری میں آنکھ کیسے دیکھتی ہے کہ ڈیلے حرکت کرتے ہیں, آنکھ ڈیلے کے اندر کا لینز سکڑتا پھیلتا رہتا ہے. اس کو روک دیا جائے, یعنی کہ یہ ڈیلے کی حرکت میں ایک ہی اس کا دائیں بائیں اوپر نیچے گھومنا ہے اور ایک ڈیلے کے اندر لینز کا چوڑا ہونا, کم ہونا, پھیلنا سکڑنا یہ بھی ڈیلے کی حرکت میں آتا ہے. تو آنکھ کے ڈیلوں میں کے تعطل میں, یعنی کہ ان کی سسپینشن میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی مناسبت سے باطنی نگاہ کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر ڈیلوں میں پوری طرح تعطل واقع ہو جائے تو لطیفہ نفسی کا کام معطل ہونے لگتا ہے. اب چونکہ لطیفہ نفسی کو نہر تزہیر فیڈ کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ اس طرح سے اسے روک دیتے ہیں, پیچھے سے نہر پوری بہہ کر آ رہی ہے تو یہاں پہ سٹوریج بڑھ جاتا ہے. تو یہ تعطل واقع ہونے سے لطیفہ نفسی میں نہر تزہیر کی روشنیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ روشنیاں اوور فلو ہو جاتی ہیں. تظہیر کا لفظ ہے ظاہر ہونے سے, مظہر بننے سے, اظہار ہونے سے. نہر تظہیر یعنی جب کوئی چیز مینیفیسٹ ہو. یہ مینیفیسٹیشن, اس کا انگریزی میں اگر آپ سمجھیں تو یہ چینل آف مینیفیسٹیشن ہے, یعنی کہ ایک چینل ہے جس پہ جانے سے چیزیں مظہر بنتی ہیں. جب کوئی انفارمیشن اس چینل پہ آ جاتی ہے تو وہ گویا مینیفیسٹیشن یعنی اپنا اظہار کرنے کی طرف چل پڑتی ہے. تو جب یہ باطنی نگاہ کو حرکت میں لانا ہو تو مادی نگاہ کو روک دیا جاتا ہے تاکہ نہر تظہیر کی روشنیاں جمع ہو کے وہ پورا ڈیم بھر کے تو اسپل ویز کی طرح باہر بہنا شروع ہو جائیں. तो वो रोशनियां साफ लिखा हुआ है इसमें, देखे कोई शक्को शुभ, रोशनियां ओवरफ्लो, इसी को स्पिलवे कहते हैं ना, डैम में ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो रोशनियों का ये उबाल, यानी ये ओवरफ्लो जो है, ये बातनी निगाह की हरकत, बातनी निगाह का सबब बनता है या बातनी निगाह की हरकत का सबब बन जाता है। जब ये रोशनियां इतनी बढ़ती हैं तो फिर ये जाहिरी नजर सस्पेंड करने से बातनी निगाह हरकत में आ जाती है। उसकी साइंस पूरी बताई, क्योंकि नहरे तजहीर उसको फीड कर रही है और वो जखीरा बढ़ गया। तो जब बातनी निगाह बेदार हो जाती है, और अगला जुमला है मुसलसल मश्क, मुसलसल मश्क, मुसलसल मश्क के जरिए उस बेदारी को कायम रखा जाता है, तो बातनी निगाह तेज होती चली जाती है। फिर ये निगाह की तेजी ऐसी निगाह का जरिया बन जाती है कि जो निगाह मादी खौल में बंद होकर और मादी खौल से आजाद होकर बयक वक्त आलम दुनिया और आलम गैब में देखती है। अब देखे ना, ये फन सीखने के लिए कुछ अरसा मुसलसल मश्क करनी पड़ेगी। ये महज पढ़कर, महज सुनकर नहीं हो सकता। अब जाहिर और बातिन दोनों दुनियाओं में बयक वक्त देखना तसव्वुफ की इस्तलाह में शहूद कहलाता है। इससे पहले एक इस्तलाह गुजरी है विरूद, विरूद से फिर आगे चल के शहूद आ गया। जब हम एक चीज को देखने के बाद दूसरी चीज को देखते हैं, या एक मंजर से निकलकर दूसरे मंजर में दाखिल होते हैं, तो पलक झपकने के साथ रोशनियों का तालक आर्जी तौर पर मुनकता हो जाता है। ये पलकें झपकने की ड्यूरेशन एक सेकंड का दसवां हिस्सा होती है। तो एक बटा दस सेकंड के लिए हमारा जो बाहर से रोशनी आंख को फीड कर रही है, उसके साथ एक सेकंड के दसवें हिस्से के लिए वो ताल्लुक मुनकता होता है, और ताल्लुक के फिर जो ही फिर दोबारा आंख खुलती है तो वो ताल्लुक कायम होने, तो एक बटा दस सेकंड के वक्फे में क्या होता है, ताल्लुक के इनकता यानी कटने और ताल्लुक कायम होने में वक्फा जो है, ये वक्फा इत्तला फराहम कर देता है। किसको? ज़हन को, कि मैंने क्या देखा है। अगर हम बेदारी में देखी हुई चीजों को रूहानी तर्जों में बेदार करना चाहें, तो हमें बेदारी में देखने की तर्जों के खिलाफ एहतमाम करना पड़ेगा, और उसकी सूरत ये होगी कि हम अपने इरादे और इख्तियार से आंख को बंद करके आंख के डेलों को मुअत्तल और गैर मुतहर्रक कर दें, यानी उनमें कोई हरकत ना होने दें। आंख के डेलों को मुअत्तल करने के दो तरीके, एक तरीका ये मश्क है के सालिक, अंधेरे में आंख झपकाए बगैर नजर जमाना सीखे, और दूसरा तरीका यह कि वो अपने इरादे से आंख बंद करके आंखों के ऊपर कोई रोएदार कपड़ा या तौलिया इस तरह बांध ले कि आंख के डेलों की हरकत गैर मुतहर्रक हो जाए, लेकिन बहुत जोर से नहीं बांधना, इतने जोर से नहीं बांधना के आंख दुखने लगे। इसको बड़े एक खास मतलब तरह से बांधा जाता है जिसमें आंख के डेले उस रोए की पकड़ में आ जाएं, जरा सी भी आंख हिलने लगे तो आपको पता चल जाए। इसका यह मतलब नहीं कि उसे आप आंख के डेले को दबा के पकड़ के तो उसको रोक दें, नहीं, सिर्फ उसको एक एहसास पैदा करने के लिए इसके इस तरह से इसकी बंदिश होती है। तो जब हम देखने के मादी तरीके को मौतल कर देते हैं तो रूह की आंख खुल जाती है। ये है सारा खलासा, ये है कितना सिंपल निजाम कि हम अगर अपनी गैर इरादी हरकत पे कंट्रोल हासिल करते हैं तो क्या होता है, गैर इरादी हरकत में हमारे इरादे का दखल नहीं होता। जब हम वहाँ अपने इरादे का इस्तेमाल करते हैं तो इरादे के इस्तेमाल से वो हरकत इरादी बनती चली जाती हैं। आपने ये बहुत सुना होगा कि योगा में सांस की मशकें करवाई जाती हैं, लेकिन इस तरह से पलक झपकने और डेलों की हरकत को साकत करने की मशक कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता। ये पहली बार हजूर कलंदर बाब औलिया ने इस कदर गहराई में इस चीज को समझाया। सांस की मशकों के फायदे ये हैं कि उससे कुव्वत इरादी बढ़ती है, क्योंकि आप देखें ना अपने पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में डायाफ्राम सबसे बड़ा एक निज़ाम है, वो हिलता है तो हमारे फेफड़े सांस से भरते और खाली होते रहते हैं, एक धोकनी की तरह फेफड़े काम करते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि हम बहुत कम हरकत देते हैं अपने डायाफ्राम को, लिहाजा वो धोकनी भी ऊपर ऊपर सिर्फ नाक से गले तक ही सांस चलता है, नाक से अंदर फेफड़ों तक और फेफड़ों में भी नीचे पेट के आखिरी सिरे तक हमारा सांस नहीं जाता, हम कभी इतने गहरे सांस नहीं लेते। इसलिए हम मिन हैसुल कौम बल्कि नौ इंसानी जो हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें जो सांस लेने का निज़ाम अता किया हम वो तो पूरा कर नहीं रहे, तो बाकी सलाहियतों का भी क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आप उसे इस बात से यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर माशाल्लाह आपका मुकम्मल हो गया कि लाइल्मी का इल्म कैसे हासिल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले जो जानते हैं उसकी नफ़ी करें और जो नहीं जानते उसके लिए कोशिश करें, और कोशिश करने के लिए चूँकि इल्म का ताल्लुक नज़र से है, बसारत से है, लिहाजा नज़र को एक्टिवेट करने के लिए आपको मादी नज़र को सस्पेंड करना आना चाहिए। जब आप मादी नज़र को सस्पेंड करना सीख लेंगे तो कुछ अरसा लगेगा, ये नहीं कि इधर आपने आंखें रोकी और साथ ही कोई मंजर शुरू हो गए, नहीं, वो साथ में नींद की कमी और साथ में ये डेलों की हरकत का तातुल जो है वो आपकी फिर बातनी निगाह को खोल देगा और आपके सामने चीज़ें आएंगी। तो जाहिर है जो चीज़ें सामने आएंगी उनका इल्म हासिल होता चला जाएगा। इसलिए ये ज़रा गौर करें कि ला का मुराकबा कितनी बड़ी बात, कितना बड़ी साइंस है ला इल्मी को जानने के, कितने शानदार नताइज हैं। जी जनाब, ठीक हो गया इरशाद? ये किताब के शुरू में वा शगाफ लिखा हुआ है कि ये इल्म नौए इंसानी और नौए जिन्नात के लिए विरसा है, लिखा है या नहीं, और मैं ये विरसा इनके सुपुर्द कर रहा हूं। क्या मतलब हुआ? अब इजाजत की बात को वाजे कर दूं, सुन लीजिए, इजाजत की बात को मैं वाजे कर दूं। जब आप किसी सिलसिले में बैत होते हैं तो चूंकि आपका मुर्शद आपकी ग्रोथ को एक खास पैटर्न पे ले जाना चाहता है, ठीक है, तो इसलिए हर काम चूंकि मुर्शद से पूछ के करना चाहिए, तो इसलिए इजाजत का अमल दखल जरूर आ जाता है। लेकिन मुर्शद क्या चाहता है कि आप ग्रो ना करें, खास तौर पे सिलसिला अजीमिया में जब ये किताब ही मुर्शद करीम की लिखी हुई है तो मेरी अकल नहीं मानती कि मैं ऐसी मशकें खुद ना करूं। मैं मैंने आपको दलील से लॉजिकल बात अर्ज की ना, ये किताब किसकी लिखी हुई है भाई? ये मेरे मुर्शिद करीम की लिखी हुई है। अब मैं अगर तो मैं किसी और सिलसिले में बैठूं तब तो मुझे ज़रूरी है कि मैं अपने पीर मुर्शिद से इजाज़त लूं कि जी ये मैं ख्वाजा साहब की लिखी हुई इस बात पे अमल करके चेक करूं। लेकिन अगर मैं हूं ही इसी सिलसिले में और फिर उन्होंने तो इसको इतना आजाद कर दिया कि इस किताब पे कहीं नहीं लिखा कि इसके जुमला हकूक महफूज हैं। नोट करें जरा, हर मुसन्निफ अपनी किताब के ऊपर लिख देता है इस किताब के जुमला हकूक महफूज हैं, इस किताब पे कहीं लिखा है? पहले पहले लिखा था फिर वो बाद में मना की। चले बहरल वो एक अलग किस्सा, लेकिन मैं इस किताब की बात इन पर्टिकुलर कर रहा हूं। शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको एक और राज की बात अर्ज कर देता हूँ, वो बात इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगी। आप देखिए जरा सा गौर करें, हमें और आपको तसव्वुर शेख करने का मुराकबा हुक्मन दिया गया है, हाँ या नहीं? आप अगर ये तसव्वुर शेख के मुराकबे में साथ साथ ये हरकत भी फरमाएं तो आपको फायदा होगा या नुकसान? आहा हा, आसान हो गया।